नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने को जीवन यापन और व्यापार में सुगमता के लिए महत्वपूर्ण बताया। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंपी। भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी को आज विशाखापत्तनम में बेड़े में शामिल किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पश्चिम एशिया संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। आज शाम छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स का समापन होगा। कर्नाटक 23 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में सबसे आगे। और क्रिकेट में इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद ने कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स को 65 रनों से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने से देश में जीवन यापन और व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विधेयक विश्वास पर आधारित ढांचे को मजबूत करता है। संसद ने जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी थी। लोकसभा ने इस विधेयक को बुधवार को ही पारित कर दिया था। यह विधेयक जीवन यापन और व्यापार सुगमता के लिए विश्वास पर आधारित शासन को और मजबूत करने के लिए कुछ कानूनों में संशोधन करता है, ताकि कुछ अपराधों को गंभीर अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा सके और कानूनों को अधिक तर्कसंगत बनाया जा सके। इसमें 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव है। कुल 784 प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार में भाग लेने के लिए पुदुचेरी जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी एक रोड शो करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं तथा जनता को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री दोपहर करीब 4:15 पर पुदुचेरी हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वहां से वे अजंता सिग्नल जंक्शन की ओर प्रस्थान करेंगे, जो उनके रोड शो का शुरुआती बिंदु है। वे रास्ते में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बातचीत करेंगे और उनसे एनडीए का समर्थन करने का आग्रह करेंगे। इस कार्यक्रम में लगभग 30,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 1,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही चुनाव ड्यूटी के लिए अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज असम के गोलकगंज निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में धुबरी जिले के रतियादाहा स्थित मेला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए को सौंप दी है। एनआईए की टीम आज पश्चिम बंगाल पहुंचेगी। एक रिपोर्ट।
इससे पहले कल सर्वोच्च न्यायालय ने मालदा जिले में एसआईआर प्रक्रिया में लगे 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले का संज्ञान लिया था। न्यायालय ने इसे निंदनीय बताते हुए राज्य के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारियों से निष्क्रियता के लिए जवाब मांगा था। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में लिया गया है। वे 6 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय को अपने प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने मालदा घटना के बाद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की है। आयोग के सूत्रों के अनुसार उन्होंने कल एक आपातकाल वर्चुअल बैठक में राज्य के शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
केरलम में चुनाव प्रचार के समापन में अब केवल 5 दिन शेष हैं। सभी 140 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार प्रचार अभियान तेज कर रहे हैं और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अंतिम समय की रणनीतियों की योजना बना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
सभी प्रमुख दलों द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी किए जाने के बाद राज्य में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। एनडीए का घोषणा पत्र जारी होने के बाद यूडीएफ और एलडीएफ ने भी कल अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए। एनडीए के प्रचार अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे। सीपीआई के प्रदेश सचिव विनोय विश्रम भी तिरुवनंतपुरम में एलडीएफ उम्मीदवारों के प्रचार कार्यक्रमों में भाग लेंगे और वहीं यूडीएफ की ओर से कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा तिरुवनंतपुरम में चुनाव प्रचार करेंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
केरल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम राजनैतिक रूप से महत्वपूर्ण विधानसभा सीट हरिपद में चल रही चुनाव तैयारियों की चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
हरिपद विधानसभा सीट अनूप झील और पाइपड़ जलोत्सवम जैसी पारंपरिक नौका दौड़ के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में 6 उम्मीदवारों के बीच कड़ा चुनावी मुकाबला देखने को मिल रहा है। रमेश चेन्नीथला हरिपद से यूडीएफ के उम्मीदवार हैं, सीपीआई के टीटी जिस्मन एलडीएफ के उम्मीदवार हैं, जबकि एनडीए ने भाजपा के संदीप वाचस्पति को मैदान में उतारा है। हरिपद से एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी के वीपी विद्या और 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी को आज विशाखापत्तनम में बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी के जलावतरण समारोह में शामिल होंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस फ्रिगेट के नौसेना में शामिल होने से भारत के पूर्वी तट का रणनीतिक और समुद्री महत्व उजागर होता है। यह आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए भारतीय नौसेना की युद्धक तत्परता और उसकी परिचालन क्षमता को भी दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पश्चिम एशिया संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। श्री गुतरश ने कहा कि अमरीका और इसराइल के लिए इस युद्ध को रोकने का ये सही समय है। ये संघर्ष भारी मानवीय पीड़ा और विनाशकारी आर्थिक परिणामों को जन्म दे रहा है। उन्होंने ईरान से पड़ोसी देशों पर हमले बंद करने का आग्रह किया। महासचिव ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीति पर जोर दिया है। पश्चिम एशिया में जारी संकट को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर 30 जून तक सीमा शुल्क में पूरी छूट देने का निर्णय लिया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर एक अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में कच्चे तेल की उपलब्धता सामान्य है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं।
हमारी रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, इसलिए सल्फर की कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे रिटेल आउटलेट्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी के बावजूद भी पंप के प्राइजेस में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है। भारत सरकार ने प्राइजेस को स्टेबल रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी में रिडक्शन किया है और कुछ भार हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी उठा रही हैं।
अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर आने वाले हफ्तों में कड़ी कार्रवाई की धमकी के बाद तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। इससे पश्चिम एशिया में संघर्ष के जल्द समाप्त होने की उम्मीद कम हो गई है। कच्चे तेल की कीमतें कल 8% तक बढ़कर $109 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव से मुलाकात की। इस बीच उन्होंने व्यापार, उर्वरक, संपर्क और जन संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग पर भी चर्चा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रस्थान हॉल में सुरक्षा जांच के बाद विदेशी मुद्रा काउंटरों पर अनिवासी भारतीयों को भारतीय रुपए के नोट बदलने की अनुमति दे दी है। ये सेवा पहले केवल गैर भारतीयों के लिए उपलब्ध थी। यात्री आव्रजन या सीमा शुल्क डेस्क के आगे ड्यूटी फ्री क्षेत्र या सुरक्षा क्षेत्र में मौजूद विदेशी मुद्रा काउंटर से भारतीय अब रुपए के नोट बदल सकेंगे। विश्व भर के ईसाई समुदाय आज गुड फ्राइडे मना रहे हैं। ये दिन ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने की स्मृति में मनाया जाता है। चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं और क्रूस यात्राएं हो रही हैं। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हो रहे हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को बर्खास्त कर दिया है। उन्होंने इसकी घोषणा ट्रूथ सोशल पोस्ट के माध्यम से की। उनकी जगह डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंश को नियुक्त किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आज समापन होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई आज शाम समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल रहेंगे। प्रतियोगिता में पुरुषों के फुटबॉल का फाइनल आज छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के बीच खेला जाएगा। पदक तालिका में कर्नाटक 23 स्वर्ण के साथ शीर्ष स्थान पर है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने कल रात कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स को 65 रन से हरा दिया। 227 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 16 ओवर में 161 रन ही बना सकी। नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
धन्यवाद मुनीष जी। देश की राजधानी से प्रकाशित होने वाले सभी हिंदी अखबारों के पहले पन्ने पर पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए रखने के बाद सुरक्षा बलों के हस्तक्षेप और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से जुड़े समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 7 न्यायिक अफसर 9 घंटे बंधक रखे। अखबार ने इस समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है। पश्चिम बंगाल जैसा ध्रुवीकृत राज्य नहीं देखा, सब राजनीतिक भाषा बोलते हैं। जनसत्ता ने इस खबर को शीर्षक से दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई, कहा बंगाल सर्वाधिक ध्रुवीकृत। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, एससी ने कहा बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त। पंजाब केसरी ने समाचार को शीर्षक दिया है, बंगाल प्रशासन को सुप्रीम फटकार। नवभारत टाइम्स ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्टून छापते हुए खबर को शीर्षक दिया है, अमरीकी राष्ट्रपति की ईरान को धमकी, पाषाण युग। ईरान की मिसाइल ड्रोन क्षमता खत्म होने के ट्रंप के दावे को भी पत्र ने प्रमुखता से छापा है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है उचित कदम। पत्र का कहना है कि एनसीआर के शहरों में वायु प्रदूषण गंभीर समस्या बना हुआ है, इसके समाधान के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।
धन्यवाद मनोज। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने को जीवन यापन और व्यापार में सुगमता के लिए महत्वपूर्ण बताया। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंप दी है। भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी को आज विशाखापत्तनम में जहाजी बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पश्चिम एशिया संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। और खेलों में आज शाम छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स का समापन हो जाएगा। कर्नाटक राज्य 23 स्वर्ण पदक लेकर पदक तालिका में सबसे ऊपर बना हुआ है। और आज शाम छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स का समापन होगा। तथा क्रिकेट में इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद ने कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को 65 रनों से पराजित कर दिया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।